एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे फ्रांसीसी विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जैसे एक पूरा दर्शन जिंदा हो उठता है, जॉन पॉल सार्त्र।
हाँ बिल्कुल, सार्त्र और अस्तित्ववाद, ये नाम तो जैसे एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं।
सही कहा, और उनका असर सिर्फ दर्शन की किताबों तक ही नहीं रहा। उन्होंने स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, इंसान होने का मतलब क्या है, इन सब पर हमारे सोचने के ढंग को गहराई से बदला।
बिल्कुल, और सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने साहित्य, नाटक, राजनीति, हर जगह अपनी छाप छोड़ी।
तो आज हम सार्त्र के जीवन, उनके मुख्य विचारों और उनकी जो स्थायी विरासत है उसे समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत।
सार्त्र को समझने के लिए पहले उस माहौल को समझना जरूरी है जिसमें वो जी रहे थे। 20वीं सदी का यूरोप।
हाँ, वो तो काफी उथल पुथल वाला दौर था।
बहुत ज्यादा। सोचिए, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ है, उसकी निराशा है, फिर वो महामंदी आई, आर्थिक संकट, फासीवाद का उदय हो रहा था इटली जर्मनी में, फिर दूसरा विश्व युद्ध, फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा,
और फिर शीत युद्ध का तनाव, मतलब लगातार एक संकट के बाद दूसरा।
जी। तो ऐसे माहौल में पुरानी मान्यताएं, खासकर पारंपरिक धार्मिक विश्वास, वो कमजोर पड़ रहे थे। लोग नए जवाब ढूंढ रहे थे
और नए विचार भी सामने आ रहे थे, जैसे फ्राइड का मनोविश्लेषण।
हाँ, फ्रॉयड, मार्क्सवाद, और एक और महत्वपूर्ण धारा थी, फेनोमेनोलॉजी।
फेनोमेनोलॉजी, ये क्या है?
आसान शब्दों में कहें तो ये दर्शन इस बात पर जोर देता है कि हम दुनिया को सीधे कैसे अनुभव करते हैं, हमारी चेतना में चीजें कैसे प्रकट होती हैं, बजाय इसके कि हम पहले से बनी थ्योरीज थोपें।
अच्छा,
सार्त्र इससे बहुत प्रभावित थे, खासकर जर्मन दार्शनिक हुसल और हाइडेगर से, लेकिन उन्होंने इन विचारों को लिया और अपने समय के जो नैतिक और राजनीतिक सवाल थे ना, उनके जवाब ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया।
और पेरिस, उस समय पेरिस का माहौल कैसा था? वो कैफे कल्चर की बहुत बात होती है।
पेरिस तो जैसे विचारों का ज्वालामुखी था, खासकर वो सेंट जर्मेन दिस प्रेज वाला इलाका, लिस ड्यूक्स मैगॉट्स, कैफेडा फ्लोरे, ये सिर्फ कॉफी की दुकानें नहीं थी,
ये अड्डे थे।
हाँ बौद्धिक अड्डे। वहां दार्शनिक, लेखक, कलाकार सब मिलते थे, घंटों बहसें होती थी राजनीति पर, साहित्य पर। सार्त्र इसी माहौल की उपज थे एक तरह से।
और यही उनकी मुलाकात सिमोन द बुवार से भी हुई।
जी, इकॉल नॉर्मल सुपीरियर में पढ़ते हुए। और वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो तो इतिहास की सबसे जानी मानी बौद्धिक साझेदारियों में से एक बन गई। सिमोन द बुवार खुद एक बहुत बड़ी विचारक थी।
उनके अलावा और कौन थे उस दौर में सार्त्र के साथ?
उनके समकालीनों में अल्बेर कामू थे, जो पहले काफी करीबी दोस्त थे, बाद में राजनीतिक वजहों से रास्ते अलग हो गए। फिर मॉरिस मर्लो पोंटी, रेमो एरॉन, ये सब मिलकर उस दौर के बौद्धिक परिदृश्य को बना रहे थे।
तो सार्त्र का व्यक्तिगत जीवन, जन्म 1905 में पेरिस में, बचपन में ही पिता नहीं रहे।
हाँ, उनके नाना और माँ ने उन्हें पाला, पढ़ने में बहुत तेज थे शुरू से ही, विलक्षण छात्र माना जाता था उन्हें।
इकॉल नॉर्मल सुपीरियर से पढ़े, जहां सिमोन द बुवार से मिले, ये तो हुई पढ़ाई की बात, कोई खास घटना जिसने उनके विचारों को दिशा दी हो?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मोड़ था उनका युद्ध कैदी बनना 1940-41 में, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान।
हाँ, वो जर्मन कैद में थे।
उस अनुभव ने, कहते हैं, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के उनके विचारों को बहुत पुख्ता किया। उन्होंने वहां महसूस किया कि बाहरी हालात चाहे जितने मुश्किल हों, इंसान के पास चुनने की, अपना रवैया तय करने की आजादी हमेशा रहती है।
और फिर उस चुनाव की जिम्मेदारी भी उसी की होती है।
बिल्कुल, और रिहाई के बाद वो फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन, मतलब फ्रेंच रेजिस्टेंस, उसमें भी सक्रिय हो गए।
यहीं से वो एक प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी बने, है ना?
Yes.
ये शब्द उनके साथ बहुत जुड़ता है।
हाँ, एंगेज्ड इंटेलेक्चुअल, मतलब ऐसा विचारक जो सिर्फ किताबी दुनिया में ना रहे, बल्कि समाज के, राजनीति के मुद्दों से सीधे जुड़े, अपनी राय रखें, एक्शन लें।
और सार्त्र ने तो ये खूब किया।
बिल्कुल, उन्होंने अकादमिक नौकरी छोड़ दी, पूरा समय लिखने और एक्टिविज्म को दिया। 1945 में लेतों मॉडर्न नाम की पत्रिका शुरू की, जो बहुत प्रभावशाली बनी।
और अल्जीरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, इन सब का विरोध किया।
हाँ, खुलकर विरोध किया। मई 1968 में जब पेरिस में छात्र आंदोलन हुए, तो वो छात्रों के साथ सड़कों पर थे, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था पर्चे बांटते हुए।
अच्छा।
तब राष्ट्रपति डी गॉल ने कहा था कि आप वॉल्टेयर को गिरफ्तार नहीं करते।
जी, ये दिखाता है कि उनका कद कितना बड़ा माना जाता था। एक दार्शनिक का इतना सार्वजनिक प्रभाव और इसी प्रतिबद्धता के चलते उन्होंने 1964 में नोबेल पुरस्कार लेने से भी मना कर दिया।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि वो किसी संस्था से बंधना नहीं चाहते। पुरस्कार स्वीकार करना उनकी स्वतंत्रता से समझौता होगा, एक लेखक और आलोचक के तौर पर।
कमाल है। अच्छा, उनके लेखन पर आते हैं। उन्होंने तो कई तरह की चीजें लिखी, उपन्यास, नाटक, दर्शन।
हाँ, और यही उनकी खासियत थी। उन्होंने मुश्किल दार्शनिक विचारों को सिर्फ अकेडमिक लोगों तक सीमित नहीं रखा, उन्हें कहानियों, नाटकों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया।
जैसे उनका पहला उपन्यास ला नौजे या मतली।
हाँ, 1938 में आया और आते ही चर्चित हो गया। उसका जो नायक है रुक्वेंटिन, उसे अचानक अपने आसपास की चीजों की, अपने होने की बेमतलबता सी महसूस होती है। एक अजीब सी ऊब, एक मतली, वो अस्तित्व के खालीपन उसकी आकस्मिकता का अनुभव है।
आकस्मिकता मतलब
कंटिंजेंसी।
हाँ, मतलब ये कि चीजें जैसी हैं वैसी ही क्यों हैं, इसका कोई गहरा कारण या जरूरत नहीं है, वो बस है। ये एहसास डराने वाला हो सकता है।
अर्शी ग्रंथ है, 1943 में आया। उसमें वो चेतना यानी कॉन्शियसनेस को एक शून्यता की तरह देखते हैं।
शून्यता मतलब खालीपन।
हाँ, एक तरह से चेतना वो नहीं है जो जड़ वस्तुएं हैं। जड़ वस्तुएं ठोस हैं, अपने आप में पूरी हैं, सार्थ उन्हें स्वयं में कहते हैं। लेकिन चेतना स्वयं के लिए, फॉर इटसेल्फ, वो हमेशा अपने से आगे होती है। वो हमेशा वो बनने की प्रक्रिया में होती है जो वो अभी नहीं है। इसी गैप, इसी शून्यता से स्वतंत्रता पैदा होती है।
ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
हाँ, ये कंसेप्ट थोड़ा जटिल है, लेकिन उनके स्वतंत्रता के सिद्धांत की जड़ यही है कि हम तयशुदा नहीं है, हम लगातार खुद को बना रहे हैं।
शायद उनका नाटक नो एग्जिट इसे थोड़ा आसान बनाता है।
हाँ।
खासकर वो लाइन नरक दूसरे लोग हैं।
हाँ, वो नाटक ज्यादा सुलभ है और वो लाइन बहुत मशहूर हुई, लेकिन उसका मतलब अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं।
क्या मतलब है फिर उसका?
उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग बुरे या दुष्ट होते हैं। सार्थ का मतलब है कि जब हम खुद को दूसरों की नजरों से देखते हैं, जब हम उनकी राय को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अपनी आजादी खो देते हैं। दूसरों का जजमेंट, उनका लुक, लरगार हमें एक वस्तु बना सकता है, हमें उनकी अपेक्षाओं में कैद कर सकता है। यही अनुभव नरक जैसा है।
अच्छा, मतलब दूसरों के हिसाब से जीने लगना ही नरक है।
हाँ, अपनी प्रामाणिकता खो देना।
और फिर आई एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमनिज्म। ये तो जैसे अस्तित्ववाद का मैनिफेस्टो बन गई।
बिल्कुल, ये असल में एक लेक्चर था जो उन्होंने 1945 में दिया था और बहुत लोकप्रिय हुआ। इसमें उन्होंने अपने दर्शन का सार, खासकर वो विचार कि अस्तित्व सार से पहले आता है, उसे आम लोगों के लिए समझाया।
हाँ, इस पे आते हैं। अस्तित्व सार से पहले आता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस।
जी,
ये सार्त्र के दर्शन का केंद्र है ना?
जी बिल्कुल, ये उनका सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार है।
इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में?
मतलब ये कि इंसान किसी बने बनाए खाके या ब्लूप्रिंट के साथ पैदा नहीं होता। जैसे कोई कारीगर कुर्सी बनाता है तो पहले उसके दिमाग में कुर्सी का आइडिया, उसका सार होता है, फिर वो कुर्सी यानी अस्तित्व में आती है।
ठीक है,
सार्त्र कहते हैं इंसान के साथ उल्टा है। कोई ईश्वर या कोई प्रकृति नहीं है जिसने हमारा सार, हमारा स्वभाव या उद्देश्य पहले से तय कर दिया हो। हम पहले बस दुनिया में आ जाते हैं, हमारा अस्तित्व होता है,
और फिर
हम अपने कर्मों से, अपने चुनावों से, अपने फैसलों से खुद को बनाते हैं। हम अपना सार खुद घड़ते हैं। हम वो बनते हैं जो हम होना चुनते हैं। कोई प्री डिटरमिनेशन नहीं है।
तो मतलब हम पूरी तरह से आजाद हैं अपने आप को बनाने के लिए।
जी बिल्कुल। हाँ, और यहीं से उनका दूसरा बड़ा विचार आता है, कट्टर स्वतंत्रता।
कट्टर स्वतंत्रता, और वो कहते हैं कि हम स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त हैं, कंडेम्ड टू बी फ्री। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है सुनने में।
हाँ, अभिशप्त या कंडेम्ड इसलिए क्योंकि ये स्वतंत्रता हमने मांगी नहीं थी। हम बस दुनिया में फेंक दिए गए हैं बिना अपनी मर्जी के। लेकिन एक बार आ गए तो चुनाव करने से बच नहीं सकते, हर पल हमें चुनना पड़ता है।
यहाँ तक कि न चुनना भी एक चुनाव है।
बिल्कुल, और स्वतंत्र इसलिए क्योंकि हमारे चुनावों की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। हम कोई बहाना नहीं बना सकते, न भगवान का, न समाज का, न अपनी प्रकृति का।
हम जो भी करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं।
और ये जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है।
हाँ, सार्थ का मानना था कि जब हम कुछ चुनते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं चुनते, हम पूरी मानवता के लिए एक छवि चुन रहे होते हैं कि इंसान को कैसा होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और डराने वाली भी हो सकती है। बुरी नीयत का सहारा लेते हैं, ये क्या है?
बुरी नीयत, हाँ, ये एक तरह का आत्मधोखा है। जब हम अपनी इस कट्टर स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से भागते हैं।
कैसे भागते हैं?
ये कहकर कि मैं तो बस एक वेटर हूं, या मैं तो औरत हूं इसलिए ऐसा कर रही हूं, या हालात ही ऐसे थे मैं क्या करता। मतलब हम खुद को किसी भूमिका, किसी लेबल या बाहरी परिस्थिति तक सीमित कर लेते हैं
और ये मानने से इनकार कर देते हैं कि हमारे पास चुनने की आजादी थी।
हाँ, हम ये दिखावा करते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, ताकि हमें उस चुनाव की चिंता और जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। सार्त्र कहते हैं, ये खुद से बोला गया झूठ है, यही बुरी नीयत है।
लेकिन क्या ये कहना कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं कुछ ज्यादा नहीं है? क्या समाज, परिवार, आर्थिक हालात, हमारी आदतें, इनका कोई असर नहीं होता? ये आलोचना तो होती होगी सार्त्र की।
हाँ, ये एक बहुत जायज और महत्वपूर्ण आलोचना है। कई लोगों ने कहा कि सार्त्र सामाजिक संरचनाओं और मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग के दबाव को कम आंकते हैं। हमारी आजादी शायद उतनी कट्टर या एब्सोल्यूट नहीं है जितनी सार्त्र कहते हैं।
बिल्कुल, हमारी परिस्थितियां हमें बहुत हद तक प्रभावित करती हैं।
जी, बाद के विचारक जैसे फुको वगैरह, जिन्हें उत्तर संरचनावादी कहा जाता है, उन्होंने तो सार्त्र के इस पूरे व्यक्ति केंद्रित स्वतंत्रता वाले विचार को ही चुनौती दी। तो हाँ, ये आलोचनाएं भी उनके दर्शन का हिस्सा हैं।
सार्त्र की तुलना अक्सर एल्बेर कामू से होती है। दोनों में क्या फर्क था मुख्य रूप से?
शुरुआत में काफी करीब थे, दोनों ने जीवन की बेतुकीपन, आजादी, विद्रोह इन पर लिखा, लेकिन राजनीति पर आकर उनके रास्ते अलग हो गए।
अच्छा, किस तरह के राजनीतिक मतभेद?
सार्थ खासकर बाद के सालों में मार्क्सवाद और सोवियत संघ के प्रति थोड़ी नरमी दिखाते थे, एक तरह की प्रतिबद्धता दिखाते थे। कामू को यह ठीक नहीं लगता था।
कामू को लगता था कि ऐसी विचारधाराएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर सकती हैं।
हाँ, उन्हें लगता था कि किसी भी वाद के प्रति आंख मूंद कर समर्पित हो जाना खतरनाक है, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। इसी बात पर 1952 में उनकी सार्वजनिक बहस हुई और दोस्ती टूट गई।
और मार्टिन हाइडेगर, जिनसे सार्त्र ने काफी कुछ लिया था, उनसे कैसे अलग थे?
हाइडेगर का फोकस ज्यादा मेटाफिजिकल था, मतलब सत्य का अर्थ क्या है, इस तरह के गहरे सवाल। सार्त्र ने हाइडेगर के कई कॉन्सेप्ट्स लिए, लेकिन उनका जोर हमेशा मानवीय अनुभव, चेतना, नैतिकता और हमारी ठोस जिंदगी पर रहा। वो ज्यादा मानवतावादी थे हाइडेगर के मुकाबले।
तो अगर हम सार्त्र की विरासत को देखें तो क्या कहेंगे, आज वो क्यों महत्वपूर्ण है?
मेरे हिसाब से उनकी सबसे बड़ी विरासत वो प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी वाली छवि है। उन्होंने दिखाया कि दर्शन सिर्फ हाथी दांत की मीनार में बैठकर सोचने की चीज नहीं है,
उसे दुनिया से जुड़ना चाहिए, उसके सवालों से टकराना चाहिए।
बिल्कुल, दशकों तक वो दुनिया के सबसे जाने माने विचारकों में से थे, उनका एक नैतिक अधिकार था। और दूसरी बात, अस्तित्ववाद, उन्होंने इसे एक अकादमिक दायरे से निकालकर एक सांस्कृतिक आंदोलन बना दिया।
हाँ, उसका असर तो कला, साहित्य, फिल्मों सब पर पड़ा,
बहुत गहरा असर पड़ा। आज भी भले ही उनके कुछ राजनीतिक स्टैंड्स पर सवाल उठते हों,
हाँ, जैसे सोवियत संघ या माओ के लिए उनका समर्थन, वो विवादास्पद रहा।
और उनकी आलोचना भी होनी चाहिए, रिगमंड एरन जैसे लोगों ने उन्हें टोका भी था, लेकिन उनके जो मूल दार्शनिक मुद्दे हैं, प्रामाणिकता, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, आत्मधोखा, वो आज भी उतने ही, शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं।
क्यों आज क्यों ज्यादा प्रासंगिक है?
क्योंकि आज दुनिया और तेजी से बदल रही है, पुराने सहारे, पुरानी पहचानें कमजोर पड़ रही हैं। ऐसे में व्यक्ति को अपना रास्ता, अपना अर्थ खुद खोजना पड़ता है, और यही सार्थ की चुनौती सामने आती है कि क्या हम ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। हम पहले हैं, फिर बनते हैं कि हम क्या हैं।
मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है।
स्वतंत्रता एक चुनाव नहीं, एक स्थिति है, और जिम्मेदारी उसका अनिवार्य हिस्सा है।
नरक दूसरे लोग हैं,
जब हम खुद को दूसरों की राय में कैद कर लेते हैं।
और बुरी नीयत में व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है,
यानी अपनी स्वतंत्रता से इनकार करना।
सार्त्र के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं, जैसे उनका नोबल ठुकराना तो हमने बात की, सिमोन द बुवार के साथ उनका रिश्ता भी काफी अनोखा था।
हाँ, आजीवन खुला रिश्ता, उन्होंने कभी शादी नहीं की, साथ भी नहीं रहे ज्यादातर, अपनी अपनी स्वायत्ता बनाए रखी, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की बात थी।
और उनका डील डॉल भी थोड़ा अलग था, कद छोटा था और आंखों में स्ट्रैबिस्मस था।
हाँ, भेंगापन और एक आंख से उन्हें दिखता भी नहीं था बचपन की बीमारी के बाद। कुछ लोग मानते हैं कि शायद इस वजह से भी उनमें वो दूसरों की नजर वाला भाव ज्यादा गहरा रहा हो।
और उनका एम्फेटामिन और तंबाकू का सेवन, वो भी काफी चर्चा में रहा।
हाँ, वो कहते थे कि इससे उन्हें लिखने में मदद मिलती है। जाहिर है ये सेहत के लिए भयानक था, लेकिन उनके जीने का अंदाज ही ऐसा था, पूरी शिद्दत से।
तो अंत में अगर श्रोताओं के लिए कोई एक विचार छोड़ना हो सार्थ से जुड़ा हुआ, तो वो क्या होगा?
शायद ये सवाल कि हम अपनी जिंदगी में बुरी नीयत से कब कब काम लेते हैं, कहां कहां हम अपनी स्वतंत्रता से मुंह मोड़कर परिस्थितियों या दूसरों को दोष देते हैं। सार्थ्रे हमें मजबूर करते हैं कि हम ईमानदारी से खुद से पूछें, हम अपने चुनावों के लिए कितने जिम्मेदार हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है, हम अपनी आजादी को कैसे जी रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी कैसे उठा रहे हैं।
हाँ, ये आसान सवाल नहीं है, लेकिन शायद सबसे जरूरी सवालों में से एक है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।